सल्लल्लाहु, साथ में कहो भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की 3 आयतें मैं पढ़ूंगा, और क्यों पढ़ूंगा उसकी वजह बता दूं। ये 3 आयतें इसलिए पढ़ूंगा, तफसीर की किताबों में लिखा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ये 3 आयतें पढ़ लें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई सबकी बात गलत हो सकती लेकिन हमारे आका का एक हर्फ भी गलत नहीं हो सकता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ये 3 आयत पढ़ ले, अल्लाह ताला 70 फरिश्तों को कहते हैं कि इसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहना। अगर सुबह में पढ़ ले तो रात तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करें, और रात को पढ़ ले तो फिर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करें। और हमारे नबी ने फरमाया कि ये 3 आयतें पढ़ ले, जब भी मौत आएगी शहादत की मौत मरेगा, चाहे घर पर मरेगा लेकिन शहीदों की मौत तुझे नसीब होगी, शहीदों का मर्तबा तुझे नसीब होगा। तो मेरे दोस्तों, ये आयत रोज़ाना पढ़ना चाहिए, भाई मरना तो है ही ना। अरे कहो ना भाई, मरना ना, कब आग बंद हो जाए किसको मालूम। मेरे दोस्तों, बस अल्लाह तबारक व ताला जब भी मौत नसीब फरमाए, इन आयतों के साथ अल्लाह मौत नसीब फरमाए, ताकि कहीं भी मरे खुदा कहेगा ये मेरा वो बंदा जो मेरे रास्ते में शहीद हो चुका है। तो मेरे दोस्तों, वो 3 आयतें, कौन सी 3 आयतें? सूरह हश्र की आखिरी 3 आयतें। मेरे बहुत से भाइयों को याद होगी, और मैं तो कहता हूँ पढ़ने का और सुनने का दोनों का एक ही हुक्म होता है। जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़े, अल्लाह ताला अभी हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, सुबह तक 70,000 फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। हम खाना खाएंगे, सोएंगे, बीवी बच्चों से बातें करेंगे, लेकिन 70,000 फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। और मेरे दोस्तों, रोज़ाना सुबह भी पढ़ो, रात भी पढ़ो, जब मरेगा शहीद होने का सवाब नसीब हो जाएगा। खैर मेरे दोस्तों, ये 3 आयतें मैं भी पढ़ूँ, आप भी पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم। मेरे दोस्तों, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना, एक बात ज़रूर आपके सामने करना है कि ये कुछ रोज़ पहले यहाँ जामिया मस्जिद में जहाँ हमारे मुफ्ती इकराम साहब दामत बरकातुहुम है, वहाँ मेरी हाज़िरी हुई थी। तो वहाँ मैंने एक दुरूद पाक बताया तो जो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन वाला दुरूद पाक है। हाँ, तो जब से कुछ लोगों ने रिसीवर पर, माँ बहनों ने सुना या जितने लोगों ने सुना, बस एक बात चली है कि भाई वो दुरूद पाक हमको मिल जाए। तो मेरे दोस्तों, मैंने सोचा कि वो दुरूद पाक फिर मैं आपके सामने भी रखूँ, अल्लाह ताला याद करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर याद ना हो तो मेरे दोस्तों, अल्लाह याद करा देवे, लेकिन अगर याद ना हो तो इस वक्त जितने भी दुरूद पाक की हमने मेहनतें की, चाहे बाटली में, ड्यूसबरी में, ब्लैकबर्न में, या लेस्टर में, या बोल्टन में, जहाँ जहाँ हमने दुरूद पाक के कुछ फजीलतें बताई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बाटली में एक हमारे भाई है जो उसको बिल्कुल एक बुकलेट की शक्ल में तैयार कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम हमारे भाई को पहुंचा देंगे, आप उनके पास से हासिल कर लेना। लेकिन इस वक्त वो दुरूद पाक में दोबारा बता दूं, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना लिख कर दो, कोई कहता मौलाना बता दो, कोई कहता मौलाना याद करा दो। और मैंने देखा कि ये दुरूद पाक की सबको फिक्र है, क्यों? इसलिए कि ये वो दुरूद पाक है जिसके बारे में लिखा कि अगर कोई बार बार पढ़ेगा तो मुनासिब जगह उसकी शादी हो जाएगी। भाई मुनासिब जगह उसकी शादी हो जाएगी। तो हमारे जितने गैर शादीशुदा भाई, जिनकी शादियां न हुई हो, वो इस दुरूद पाक को बार बार पढ़े। लिखा है कि मुनासिब जगह शादी होगी, और उस जगह शादी होगी जहां खुदा ने उस रिश्ते को मंजूर किया होगा, जहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने उस रिश्ते को मंजूर किया होगा। तो हमारे गैर शादीशुदा के लिए तो ये बहुत बड़ा तोहफा है कि बार बार पढ़ते रहे, अल्लाह मुनासिब जगह रिश्ता करवा देगा। इसलिए कि आज सबसे बड़ा टेंशन यही होता कि शादी होने के बाद फिर घर चलेगा या ये बड़ा, यहाँ इंग्लैंड में तो बड़ा खतरा रहता है, बड़ा मामला ये अजीबोगरीब रहता है। तो खैर, ये तो हमारे नबी का फरमान है, भाई पढ़ ले, अल्लाह आसमान पर फैसला करेगा। भाई तो ये तो गैर शादीशुदा के लिए, और लिखा है कि भाई शादीशुदा भी पढ़े, शादीशुदा भी पढ़े तो क्या हो जाएगा, डबल शादी हो जाएगी। भाई गैर शादीशुदा पढ़ेगा तो आसमानी रिश्ता मिलेगा, तो शादीशुदा तो कहेगा मैं भी पढ़ूँ, एक तो ज़मीनी था अब एक आसमानी भी मिल जावे। मेरे दोस्तों जब मैं ये कहता हूँ कि भाई डबल हो जावे तो मैं देखता हूँ हमारा इंग्लैंड का कोई भाई कहने को तैयार नहीं, इसलिए कि सबको फिक्र है कि घर जाना है। इसलिए देखो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए, कहा कि ये इतना प्यारा दुरूद पाक है, दुरूद तो एक ही है, गैर शादीशुदा पढ़ेगा तो मुनासिब जगह शादी हो जाएगी, और शादी वाला पढ़ेगा तो उसके घर में मोहब्बत की फिजा कायम हो जाएगी। भाई शादी वाला पढ़ेगा तो घर में मोहब्बत हो जाएगी, गैर शादीशुदा पढ़ेगा तो आसमान से खुदा रिश्ते के फैसले करेगा। ये दुरूद पाक दो जुमले पर मबनी है, पहले जुमले में अल्लाह की तारीफ है और दूसरे जुमले में हमारे आका पर दुरूद है, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई याद कर लोगे ना, पहले जुमले में अल्लाह की तारीफ है, मैं एक मरतबा पढ़ूंगा, एक मरतबा पढ़वाऊंगा, फिर बाद में हमारे भाई के पास से आपको मिल जाएगा। ये दुरूद पाक है, अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ि वल किबरिया व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद मद खातम अंबिया। तो दो जुमले हो गए, भाई मेरे साथ में पढ़ो, पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल इज़्ज़ि वल किबरिया, दूसरा जुमला व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद खातम अंबिया। अल्लाह तबारक व तआला तमाम जोड़ों में सलामती नसीब फरमाए। मैंने गुज़िश्ता साल भी एक शेर कहा था, आप लोगों को अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहना, नहीं अच्छा लगे तो खामोश रहना। लेकिन इंग्लैंड वालों पर शेर बनाया हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में शेर वेर नहीं बनाया, लेकिन यहाँ आके बनाया, हालात को देखकर बनाया। भाई मैं मेरे भाई से भी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने शेर बना तो दिया, मैंने ये शेर बनाया, बीवी से डरने वालों की कमी नहीं अहमद। मेरा नाम अहमद अली है ना, तो मैंने अपना नाम भी रखा ताकि मुझे लोग अलग कर देवे। भाई बीवी से डरने वालों की कमी नहीं अहमद, बगैर ढूंढे बेशुमार मिलते हैं, जितने चाहो इंग्लैंड से उठा लो, तरह तरह के उधार मिलते हैं। पसंद आया तो कहो ना सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह कहना मतलब है बिल्कुल फिटो फिट। खैर भाई माशाल्लाह आपका चेहरा हंसता हुआ, अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसाता रखे। हाँ मेरे दोस्तों, मैंने कहा था अगर हंसना भी इस नीयत से हो जाए कि मेरे नबी भी कभी कभी हंसा करते थे, तो हंसने पर भी 100 शहीदों का सवाब नसीब हो जाएगा। भाई हंसने पर भी 100 शहीदों का सवाब नसीब हो जाएगा। और मैंने जैसे पहले कहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक सहाबी को बुलाते थे, सारे सहाबा में सबसे ज़्यादा हंसाने वाले हजरत नुएमान, कौन? इसलिए हमारे अंदर भी कोई हंसने हंसाने वाला बहुत हो तो मैं कहता हूँ भाई ये तो नुएमान मालूम होता है। हाँ हमारे नबी के ज़माने में सबसे ज़्यादा हंसने हंसाने वाले हजरत नुएमान। एक मरतबा सफ़र हो गया हजरत नुएमान का, साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक और एक और सहाबी जिनका नाम है हजरत सुवैबित। क्या नाम है? हजरत सुवैबित। तीन आदमी का सफर हो रहा, हजरत अबू बकर भी, हजरत नुएमान भी, हजरत सुवैबित। अब रास्ते में हजरत नुएमान को भूख लगी, भाई मस्ती की तो आदत थी, भूख लगी तो सुवैबित को कहा लाओ खाना लाओ। भाई सुवैबित को कहा खाना लाओ तो सुवैबित ने कहा नहीं दूंगा। भाई सुवैबित ने कहा नहीं दूंगा, फिर आगे बढ़े थोड़ी देर के बाद, अरे भूख लगी खाना लाओ, तो कहा नहीं, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे वहां तक एक रोटी नहीं मिलेगी। हजरत नुएमान ने कहा ठीक है अब देखो क्या होता। हजरत नुएमान ने कहा देखो ठीक है अब क्या होता। अब एक जगह पर कहीं पड़ाव डाला, हजरत सुवैबित भी बैठे थे, हजरत नुएमान भी बैठे थे, और हजरत अबू बकर इस्तिंजा करने गए, तो हजरत अबू बकर चले गए। तो हजरत नुएमान ने देखा ये मौका बड़ा अच्छा है, खाना दो मरतबा मांगा था, दोनों मरतबा दिया। तो हजरत नुएमान भी वहां से उठे, दूर कुछ आदमी बैठे थे, उनको कहा भाई सस्ते में गुलाम चाहिए। दूर कुछ आदमी बका एकदम सस्ते में 10 दिरहम में एक बहुत अच्छा गुलाम, जवान गुलाम चाहिए। तो वो जो काफले वाले थे कहा अरे भाई अच्छा है खादिम मिल जाएगा 10 दिरहम में। तो कहा देखो वो नजर आते ना, सुवैबित की तरफ इशारा किया, कहा वो नजर आ, कहा लेकिन उसमें एक खराबी, जब उसको पकड़ोगे तो कहेगा मैं गुलाम नहीं हूं, जब उसको पकड़ोगे तो कहेगा मैं गुलाम नहीं मैं आजाद हूं, लेकिन तुम लोग रहम मत करना पकड़ के खींच के ले जाना। और वो खुद भी इस्तिंजा करने चले गए। अब वो लोग आए और आकर कहा कि भाई हमारा आपका सौदा हो गया चलो। तो कहा अरे भाई मैं गुलाम थोड़ी हूँ। हजरत सुवैबित ने कहा मैं गुलाम, कहा कि हाँ वो तुम्हारा आका कहता था कि तुम कहोगे कि गुलाम नहीं, और गले में रस्सी डाली और खींचना शुरू किया। अब खींचते गए लेते गए, वो नुएमान दूर से आ रहे कहते और खाना मत देना, दूर से चीख रहे और खाना मत देना, मैंने एक रोटी मांगा था, देखो कैसे खींचे जा रहे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला वहां पर पहुंच गए, देखा कि ऐसा मामला, जल्दी हजरत अबू बकर गए और कहा कि भाई ये नुएमान की तो आदत ऐसी है, ये नुएमान की किसी तरीके से छुड़ा कर लाए। जब हजरत सुवैबित वापस आए तो थोड़े नाराज होने लगे। किस पर नाराज होने लगे? हजरत नुएमान पर, कि मुझे रस्सी से खींचकर वो लोग ले गए, मुझे बचाने भी नहीं आए। तो हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया? हजरत अबू बकर ने फरमाया अरे नुएमान पर नाराज मत हो, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा था नुएमान पर नाराज मत हो, इसका दिल वो है जो अल्लाह रसूल के साथ मिला हुआ है। تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہنسنا بھی نصیب فرمائے تو اتباع سنت میں ہنسنا نصیب فرمائے. میرے دوستو اندازہ لگاؤ, اگر مومن کا ہنسنا بھی سنت پر ہو, اس کا رونا بھی سنت پر ہو, تو اس کی زندگی سے بڑھ کر کسی کی اچھی زندگی ہو ہی نہیں سکتی. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی وحدانیت اور توحید نصیب فرمائے. میں اکثر ایک بات سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ بھائی سب کہہ دو لا الہ, ہاں ذرا جم کے کہہ دو لا الہ, اور جم کے کہہ دو لا الہ الا. میرے دوستو اتنا کہو, اتنا کہو کہ دل کی گہرائی میں یہ بات آ جائے کہ کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. میرے دوستو آج جو کچھ ہوتا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے, جو کچھ ہوا, سب کس کی طاقت سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طاقت سے. میرے دوستو اللہ ہی کی طاقت سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ایک جگہ پر نہیں, کتنی جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تجھ سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کلام مجید میں فرماتے میرے بندے تجھ سے کچھ نہیں ہوتا, اگر میں نہ چاہوں تو تجھے پانی کا قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا. بھائی کہا نا اللہ نے, بھائی اللہ نے کہا نا. اسی لیے میرے دوستو میں تو کہتا ہوں روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو. رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھ لیا کرو؟ سورہ, جو سورہ واقعہ پڑھ کر سوتا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا اس کے گھر میں کبھی کوئی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا, اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. تو میرے دوستو یہ سورہ واقعہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کیسے اللہ نے چھوٹے چھوٹے سوال اٹھائے اور کتنے بڑے بڑے جواب عطا فرمائے. اللہ نے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھے لیکن بڑے بڑے جواب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا, اللہ نے خود پوچھا, بھائی کہہ دو سبحان اللہ. بھائی جب بھی قرآن کی آیت آئے تو کہہ دو سبحان اللہ. اللہ نے خود پوچھا, افرائیتم الماء الذی تشربون. رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندے تو جو پانی پیتا ہے کبھی اس کے بارے میں تو نے سوچا کہ یہ پانی تیرے منہ تک کس نے پہنچایا؟ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ پانی پہنچانے والا کون؟ بھائی ساتھ میں کہہ دو, پانی پہنچانے والا کون؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی پہنچا؟ اور جتنا بھی ہم کو پانی ملا اچھا ملا کہ نہیں ملا؟ کون اچھا ملا نا. اللہ کہتے پی لے پانی, اللہ کہتے پانی پی, پانی پی, میں رحمان رحیم ہوں, پانی پی لے. تیرے گناہ کو دیکھتا تو پانی کو کڑوا بنا دیتا. اللہ کہتے تیرے گناہ کو دیکھتا تو پانی کو کھارا. اور لو نشاء اجالناہ اجاجا. اللہ فرماتے اگر چاہتا تو اس پانی کو کبھی کھارا بناتا, کبھی کڑوا بناتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا فلولا تشکرون. اللہ فرماتے میرا بندہ میرا ہی شکر ادا کر, میں نے ہی کھلایا, میں نے ہی پلایا, میں نے ہی تجھے کلمہ دیا. لیکن میرے دوستو جس خدا نے سب دیا اس کے در کو چھوڑ کر ہم تو کہیں اور چلے گئے. بھائی چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے دوستو سب کچھ کرنے والی ذات کون؟ پھر ایک مرتبہ جم کے کہہ دو اللہ. اسی لیے میں تو کہتا ہوں میرے دوستو علاج کراؤ. علاج کرانا تو سنت ہے نا بھائی, علاج کرانا سنت ہے, علاج کراؤ. لیکن شفا دینے والا کوئی بھی علاج کراؤ, چاہے آپ ہومیوپیتھی کراؤ یا آیورویدک کراؤ یا حکیمی کراؤ یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ یا کسی تعویذ والے کے پاس جاؤ, سب علاج علاج ہے میرے دوستو. شفا دینے والا اللہ ہے بھائی, شفا دینے والا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اتنی پیاری بات حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی نمرود کے سامنے, خدا نے اس کو نقل فرمایا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. کہو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دینے والا. کہہ دو بھائی شفا دینے والا. آج جو 25واں پارہ جو رکوع میں پڑھا رہا تھا میرے دوستو, کتنا عجیب اللہ نے بتایا. اللہ نے بتایا کہ یہ اولاد کا معاملہ بھی تو میرے قبضے میں. ارے کہہ دو نا بے شک. آپ تھکے تو نہیں نا بھائی, ساتھ میں کہہ دو نا, اولاد کا معاملہ کس کے قبضے میں؟ اسی لیے اللہ نے کہا جس کو چاہوں لڑکیاں دے دوں اس کو میرے اوپر کوئی آبجیکشن کرنے کی ضرورت نہیں, جس کو چاہوں لڑکے دے دوں. اور آگے اللہ نے فرمایا جس کو چاہوں لڑکا بھی دوں لڑکی بھی دوں. اور چوتھی بات کہی اللہ نے کہا جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دو لیکن میرے اوپر آبجیکشن مت کرنا, انہو علیم قدیر. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تیرے حق میں کون سی چیز اچھی ہے.